कियाना ने इनाया को किडनैप करने के बाद जब दीवा को कॉल किया था तब उसने साफ कहा था कि वो आर्यांश को इस बारे में कुछ ना बताए। सिर्फ आर्यांश ही इकलौता शख्स था जो दीवा को इस मुसीबत से निकाल सकता था। कियाना के धमकाने के बावजूद दीवा सीधा आर्यांश के पास गई थी। इनाया को ढूंढने का काम आर्यांश ने सार्थक को दे दिया था। दीवा भी सार्थक के साथ इनाया को ढूंढने के लिए चली गई थी, तो वहीं आर्यांश कियाना से मिलने पहुंचा। आर्यांश ने पहले यही सोचा था कि वो कियाना से सख्ती से पेश नहीं आएगा और सीधा ही उससे इनाया का पता हासिल कर लेगा। उसे यही लगा था कि कियाना ने अपनी नादानी में ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद वो अनजान बनने का दिखावा कर रही थी और उसकी इस हरकत ने आर्यांश को बुरी तरह से चिढ़ा दिया था। आर्यांश गुस्से में गहरी सांस लेते हुए तेज आवाज में बोला, अच्छा तो तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है? कल तुम दीवा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी और उसे धमका रही थी, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी। क्या तुमने उसकी बहन को किडनैप करके उसकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक किए हैं? हो क्या गया है तुम्हें? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्मी पर उतर आओगी। आर्यांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आर्यांश, वो मैं कियाना का सच सामने आ गया था तो वो हकलाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी। तुमने दीवा को धमकाने की हिम्मत कैसे की कियाना? मेरे बारे में इतना पता कर रही हो तो एक बात पता चल गई होगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? आर्यांश ने आगे कहा। आर्यांश प्लीज़ मुझसे इस तरीके से बात मत करो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती थी और तुमने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तुम मुझे अच्छे से समझते हो तो तुम्हें ये भी एहसास हो गया होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते आर्यांश? कियाना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। कियाना आर्यांश के पास गई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यांश ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। हालांकि आर्यांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था कि कियाना की इतने दिनों की मेहनत को एक पल में आर्यांश ने कुएं में धकेल दिया था। इस वक्त कियाना खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो तो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, बस फूट फूट कर जोर जोर से रो रही थी, इतना कि आर्यांश के सिर में दर्द होने लगा था। कियाना ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, आर्यांश प्लीज मुझे एक मौका और दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगी। जरूरत नहीं है, जिसे मैं पसंद नहीं करता फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो, आर्यांश ने उसका हाथ झटक कर ठंडे लहजे में कहा। आर्यांश बिल्कुल क्लियर था, अगर वो पहले ही कियाना को पसंद करने लगता तो वो शायद आज इस हद तक नहीं जाती। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं अपनी गलती मानती हूँ और कसम खाकर कहती हूँ आगे से दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो, कियाना ने फिर से आर्यांश का हाथ पकड़ लिया था। आर्यांश ने कियाना की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, अगले आधे घंटे में इनाया को छोड़ दो और उसके सभी फोटोग्राफ्स डिलीट कर दो, हो सकता है उसके बाद हम सिर्फ दोस्त रह सकें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, और तुम जानती हो ना मेरा गुस्सा कैसा है। अपनी बात खत्म करके आर्यांश ने कियाना को खुद से दूर किया और उसे कमरे से बाहर निकल गया था। ऐसे लग रहा था कि आर्यांश ने उसे पूरी तरह नकार दिया है, वो बहुत बेरहम हो गया था, जबकि उसके प्यार में कियाना खुद तक को मिटा चुकी थी। आर्यांश से अब उसका दोस्ती भर का रिश्ता रहा था, वो भी उसके एक डिसीजन पर डिपेंड करता था। कियाना ने आर्यांश से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए सभी तस्वीरें डिलीट करने और इनाया को घर छोड़ने का डिसीजन लिया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक और दीवा को इनाया मिल गई थी, वो एक बंद फैक्ट्री में कैद थी। सार्थक के आदमियों ने उन गुंडों से निपट लिया था। दीवा जल्दी से दौड़कर फैक्ट्री के अंदर गई, उसे देखते ही इनाया उससे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी थी। इनाया, आई एम रियली सॉरी कि मुझे आने में देर हो गई और मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, दीवा उसे सहलाते हुए बोली। दीवा की आंखें भी नम हो गई थी, इनाया सिर्फ 16 साल की थी और उसे इस उम्र में इतना सब कुछ नहीं सहना चाहिए था। इनाया काफी समझदार थी, कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया था। वो दीवा से अलग होकर मजबूत आवाज में बोली, चिंता मत कीजिए दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनाया को अब तक नहीं पता था कि कियाना ने उसके कैसे फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। दीवा ने भी उसे कुछ नहीं बताने का निश्चय किया, वो जानती थी कि आर्यांश सब संभाल लेगा, ऐसे में अगर इनाया को कुछ ना भी पता चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। दीवा ने इनाया के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे आंखों ही आंखों में सब सही होने का आश्वासन दिया। लेकिन दीवा सोच में पड़ गई थी, क्या उसे सच में आर्यांश को छोड़ देना चाहिए था? आज कियाना उसे और आर्यांश को दूर करने के लिए इस हद तक उतर आई थी, कल को वो उसके किसी दूसरे परिवार के सदस्य को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। दीवा अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी इनाया ने कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो फिर कुछ खाते हैं, दीवा ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। दीवा इनाया का हाथ पकड़कर बाहर निकली थी। बाहर आते ही वो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि बाहर अच्छे खासे बॉडीगार्ड्स थे, वो भी काफी संख्या में खड़े हुए थे। वो समझ गई थी कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल शांत थी।
गाड़ी के अंदर आते ही दीवा ने सीधा आर्यांश को कॉल किया। आर्यांश के कॉल रिसीव करने पर उसने बेहद थकी आवाज में कहा, आर्यांश, आज का दिन दीवा के लिए काफी भारी था। पहले क्रिटिकल सर्जरी अटेंड करना, तो बाद में अचानक से इनाया का किडनैप हो जाना। उसकी परेशानी आर्यांश समझ सकता था। वो नरम लहजे में बोला, हाँ सुन रहा हूँ। इनाया मिल गई है, आज रात में घर नहीं आ सकती हूँ, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, दीवा ने धीमी आवाज में कहा। इनाया उसके कंधे पर सो रही थी, तो वहीं सार्थक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हालांकि सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन दीवा इनाया के लिए परेशान थी। आर्यांश का दिन भी काफी बुरा साबित हुआ था और वो दीवा के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। लेकिन जब दीवा ने आज रात न आने के लिए कहा तो उसके चेहरे पर मायूसी उभर आई थी। उसे अब दीवा के साथ रहने की आदत हो गई थी। ठीक है, आर्यांश ने जवाब में कहा, हालांकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। डिनर कर लेना और जल्दी सो जाना, गुड नाइट आर्यांश, दीवा ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। उसने एक नजर इनाया की तरफ देखा जो उसके कंधे पर ऐसे सो रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। दीवा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी। जब से आर्यांश उसकी जिंदगी में आया था सब कुछ बदल सा गया था। पहले दीवा की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन आर्यांश के आने के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। दीवा ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज वो काफी थक गई थी। दीवा और आर्यांश की दुनिया पूरी तरह अलग थी, शायद यही वजह थी कि कोई भी उसे आर्यांश के साथ देखने नहीं चाहता था। कुछ ही देर में वो मॉल पहुंच चुके थे जहां दीवा ने पहले इनाया के लिए कपड़े खरीदे और उसे तैयार किया। खाना खाने के बाद वो दोनों सीधा अपने घर के लिए निकल रहे थे जहां सार्थक ने उन्हें ड्रॉप किया था। घर के अंदर आते ही जैसे ही दीवा ने लिविंग रूम की लाइट चलाई तो सामने सोफे पर प्रार्थना बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद नहीं आई थी।
उन दोनों को देखकर प्रार्थना जल्दी से उठी और उनके पास आते हुए सख्त अंदाज में बोली, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? कब से कॉल कर रही हो, कॉल रिसीव नहीं कर रही हो दोनों? और इनाया, तुम्हारे हॉस्टल से पता चल रहा है कि तुम दोपहर से गायब थीं। हाँ मॉम, मैंने ही इनाया को अपने पास बुलाया था, हम दोनों मूवी देखने के लिए गए थे, लेकिन आप अब तक क्यों जाग रही हैं? दीवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अफकोर्स मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी, इस वजह से नींद नहीं आई, और तुम दोनों पागल लड़कियां मेरा कॉल तक रिसीव नहीं कर रही थी, प्रार्थना ने नाराजगी जताते हुए कहा। मेरा फोन बंद था और इनाया का मुझे लगता है साइलेंट रह गया होगा, दीवा ने सफाई दी। प्रार्थना इस वक्त काफी थकी हुई थी, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दोनों घर आ गई थीं तो उसे भी चिंता नहीं हो रही थी। प्रार्थना वहां से सीधे सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। दीवा और इनाया भी दोनों अपने कमरे में आ चुकी थीं। वो दोनों बिस्तर पर लेटी हुई थीं। दीवा को समझ नहीं आया कि वो बातचीत की शुरुआत कहाँ से करे। आज का दिन बहुत बेकार था ना, दीवा ने थकी हुई आवाज में कहा। इनाया ने करवट ली और दीवा के चेहरे की तरफ देखकर जल्दी से कहा, दीदी प्लीज, हम दोनों बहनें हैं और आप मुझसे इस तरह फॉर्मली बात क्यों कर रही हैं? वैसे मुझे लगता है कि आज मेरी जो किडनैपिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। इनाया काफी समझदार थी। कियाना का सोचते ही दीवा का दिल भारी होने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और घबराहट में सिर्फ हाँ कहा। क्या ये आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है? इनाया ने आगे पूछा। उनका कोई दुश्मन नहीं था, अगर था तो वो इनाया को क्यों किडनैप करता? ऐसे में सिर्फ दीवा की लव स्टोरी ही बचती थी जिसकी वजह से आज वो मुसीबत में आ गई थी। हाँ इनाया, लेकिन ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी वजह से तुम कभी मुसीबत में नहीं आओगी, ये पहली और आखिरी बार था, दीवा ने गंभीर आवाज में कहा। दीवा ने इनाया के हाथ को कसकर पकड़ लिया था, मानो उसे छोड़ा तो वो फिर से उससे दूर चली जाएगी। दीदी आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं आप पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ और आपकी कोई गलती नहीं है, ये गलती उन बुरे लोगों की है जिन्होंने मुझे किडनैप किया, इनाया ने आश्वासन दिया। इनाया भी काफी डरी हुई थी, लेकिन दीवा को शांत करने के लिए वो मजबूत होने का दिखावा कर रही थी। दीवा को भी बहुत बुरा लग रहा था। इनाया मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से गलती से भी मेरी वजह से तुम कभी हर्ट नहीं होगी, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। इनाया अब उठकर बैठ गई थी, उसकी आंखों से नींद उठ चुकी थी, तो वहीं दीवा भी सोने के मूड में नहीं थी। इनाया ने गंभीर आवाज में कहा, दीदी क्या आप मुझे अपने और आर्यांश कपूर की लव स्टोरी के बारे में बता सकती हैं? ऐसा क्या है जो आपकी लव लाइफ की वजह से कोई इस कदर गिर गया कि वो किडनैपिंग पर उतर आया? दीवा उठकर बैठ गई थी। उसने जवाब में कहा, हम दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी लिहाज में उसके लायक नहीं हूँ, सब यही चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं, और आज तो मुझे भी ये लग रहा है कि मुझे आर्यांश के साथ नहीं रहना चाहिए, जब उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय मुझे किडनैप कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। दीवा की आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यांश से प्यार करना उसे इतना महंगा साबित होगा। आज जो भी हुआ था उसने दीवा को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसे आर्यांश के साथ रहना चाहिए या नहीं। एक तरफ जहां आर्यांश तो दीवा के बिना अब रह भी नहीं सकता और दीवा अलग होने का सोच रही है, सोचो उसके इस डिसीजन के बारे में आर्यांश को पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले भाग में मिलते हैं।